ओम शांति। आज का टॉपिक, आज टॉपिक पे चर्चा करेंगे, श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति। सभी अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। पहले हम चिंतन करेंगे, सभी सोचेंगे श्रेष्ठ स्थिति किसे कहा जाता है, ताकि हमारे सामने क्लियर पिक्चर हो, ये स्थिति है श्रेष्ठ स्थिति। बोलो सुशील, शुरू करो। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, पहले ही छक्का। ठीक है, जो निंदा स्तुति हार जीत मान अपमान सुख दुख में समान रहे, सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वो। श्रेष्ठ के भी आगे जोड़ दिया, सर्वश्रेष्ठ स्थिति। अब मैं प्रश्न पूछता हूँ, एक व्यक्ति का मन बहुत कमजोर है, जल्दी रो लेते हैं, ये श्रेष्ठ स्थिति है? नहीं है। श्रेष्ठ स्थिति अर्थात अब इसके विपरीत। बोलो, कन्याओं का प्रश्न है ये। अरे बोलो ना, इतनी अच्छी बात। पावरफुल, रोए नहीं, इसका अर्थ ये नहीं दूसरों को रुला दें, रोए नहीं, अचल अडोल रहे। सेंसिटिव माइंड नहीं, इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिव माइंड, जिसको फीलिंग बहुत आती है, जो जल्दी डाउन हो जाते हैं, छुई मुई, जल्दी डाउन, किसी ने कुछ कहा भी पूरा ही नहीं हुआ, खुशी गुम, फिर लाने के लिए लंबा समय लगता है। और रोज ही कोई बोल दे तो उनकी खुशी सदा के लिए डब्बे में बंद हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति नहीं, योग तो स्थिति बनाने का साधन है। अब हम स्थिति की बात, एक रस, इसका अर्थ, एक रस कहना सहज है, लेकिन इसका अर्थ एक बाबा दूसरा न कोई, ये भी कठिन बात है, कहना नहीं, कहने से काम नहीं चलेगा। एक बाबा दूसरे हजारों होते हैं, दो चार नहीं, हजारों रहते हैं। कोई एक आ जाए, मेरी माँ अकेली है, मैं उसे छोड़ के आ गई हूँ सेवा में, वो मुझे जरूर याद करती होगी। मैंने कहा फिर उसे कौन संभालेगा? अब देखो ये प्रश्न सबके उठते हैं, उसे कौन संभालेगा? कोई नहीं है, और बच्चे नहीं, पति नहीं। मैंने पूछा आयु कितनी? 50 साल। मैं तो हंसी में कहा चलो 10 साल तो मौज मनाओ, वो आप अपने को संभालती रहेगी, चिंता न करो। इसके बजाय क्या संकल्प करे मनुष्य? ये एक ही संकल्प, उसे अब कौन संभालेगा? वो मेरे बिना कैसे रहेगी? वो अकेली रहती होगी। तो मोह उसको नहीं, मोह इसको है। मैंने कहा आज स्थिति संसार की ऐसी है, तो उनके पास भी रहो तो भी नहीं संभाल सकते। हर एक को स्वयं संभालना है, और जो अपनी स्थिति को संभालना जान गया वो स्वयं को संभाल लेता है, बाबा उसे संभाल लेता है। क्यों न ये संकल्प करें, बाबा संभालेगा। मनुष्य मनुष्य को संभाल भी क्या सकता है? आपका लड़का बाइक पर घर से निकल के बाहर गया, अब आप संभालेंगे उसे? संभालेंगे? बोलो ना, मैंने उत्तर दे, या उसको खुद संभालना है? ठीक बात है ना, कोई किसी को नहीं संभालता। अपनी स्थिति को संभालें, और बाबा सबको संभालेगा, इसमें विश्वास अगर होगा, और बाबा से यदि कनेक्शन होगा सर्वशक्तिवान से, तो वो संभालता रहेगा। एक रस अर्थात दूसरा रूप लें इसका, खान पान का रस नहीं, कानों का कौन सा रस होता है? निंदा रस पर चिंतन रस बड़ा मजा आता है, वो नहीं। जीभ का कौन सा रस? खान पान का, वो भी नहीं। आंखों का रस सब जानते हैं, वो भी नहीं। इन रसों से जो मुक्त है उनकी स्थिति श्रेष्ठ है। मुख से किसी के कड़वे वचन निकलते हों उसकी स्थिति श्रेष्ठ मानी जाएगी? कोई नहीं मानेगा। किसी को गुस्सा आता हो उसकी स्थिति अच्छी कही जाएगी? चाहे वो 2 बजे उठ के योग करते हो। इसी आत्मा से मैंने पूछा, दिनचर्या क्या रहती है, कितने बजे उठती हो? हिचकिचा रही थी, मैं सोचा 6 बजे उठती होगी इसलिए हिचकिचा रही। 2 बजे उठती हूँ। 2 बजे उठ के भी यदि मन नाजुक रहे, मोह खींचता रहे, मैंने उसे कहा 2 बजे न उठो, 3 बजे उठा करो। 9 बजे सोती है, 3 बजे उठो, फ्रेश रहो। तो हम अपने बोल पे ध्यान दें, क्रोध पे ध्यान दें। श्रेष्ठ स्थिति उसकी है जिसने अपने चित्त को शांत कर लिया हो। श्रेष्ठ स्थिति वो है जिसका चित्त सभी के लिए प्रेम और शुभ भावनाओं से भर गया हो। श्रेष्ठ स्थिति उसकी नहीं जिसने अपने मन में ईर्ष्या द्वेष नफरत तेरा मेरा ये बसा लिया हो। यह है उसकी स्थिति श्रेष्ठ। बोलो, नहीं बोल रहे? जिसके मन में घृणा भाव तेरा मेरा वैर भाव है उसकी स्थिति श्रेष्ठ है भाई लोग? नहीं है, क्योंकि उसकी सारी शक्तियां इनमें जाती रहेगी। चाहे वो 2 बजे उठ के योग करे, चाहे सारी रात करता रहे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए श्रेष्ठ स्थिति की कुछ बातें ध्यान में रखते हुए, बहुत सारी बातें 100 हो सकती हैं। एक व्यक्ति अपने बड़ों को सम्मान नहीं देता, उसकी स्थिति भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाएगी। एक व्यक्ति है दूसरों को सेवाओं में सहयोग नहीं करता, टकराव में रहता है, उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। एक व्यक्ति में अहम भाव बहुत है, उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता, उसकी स्थिति भी अच्छी मानी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सौम्य शीतल सॉफ्ट पावरफुल ऊंचे विचार रखने वाले हैं, ऊंचे स्वमान में स्थित हैं, महान स्वमान में, जो सबको सुख देते हैं, जिनके मुख से कड़वे वचन नहीं निकलते, जिनका मुख खुलते ही अमृत धार बहने लगती है, वही श्रेष्ठ स्थिति वाले हैं। जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी है उनकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ मानी जाएगी। तो हम अब चिंतन करेंगे, श्रेष्ठ स्मृतियों से श्रेष्ठ स्थिति बनती है। स्मृति माना, इसको कुछ भारी नहीं समझना है। बाबा ने आते ही हमें बहुत कुछ याद दिला दिया, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी, तीनों कालों की बहुत सारी बातें याद दिला दी। जरा उनको याद करेंगे और कनेक्शन जोड़ेंगे कि किस स्मृति से कैसे स्थिति श्रेष्ठ बनती है। आदि के लिए क्या याद दिलाया? बोलो, सबको पता है, कोई नई बात नहीं, कोई गहरी बात नहीं, सिंपल, रोज सुनते हैं हम सब। बोलो बोलो ना, उमंग से बोलो, डर पता नहीं ऐसे नहीं बोलो, पता है आपको? बोलो भाई, बोलो। अच्छा, बहनों की आवाज धीमी है, पीछे की बहनें बोले। आदि के लिए क्या याद दिलाया बाबा ने? ठंडा ठंडा बोल रहे हैं, रोज मुरलियां इसी पे चलती हैं, रोज। तभी तो लोग कहते हैं बाबा रोज वही वही सुनाता है। रोज सुनाने के बाद भी आपको याद नहीं तो क्या करे, और रोज कई बार सुनाए। हम सभी देवी देवता थे। महाराजा महारानी थे वो छोड़ो, अंदर नहीं जाएगा कहियोगे महाराजा महारानी छोड़ो, ऐसे ही ठीक है। हम श्रेष्ठ देवी देवता थे, अपने उस स्वरूप को सामने लाएं। अगर हमें ये नशा हो जाए, हमारा आदि स्वरूप देव स्वरूप है, तो क्या आ जाएगा स्थिति में? बोलो, दैविक गुण आने लगेंगे। और बोलो बोलो, शक्तियां देवताओं से न जोड़े, और कुछ दिव्यता आने लगेगी, प्योरिटी आने लगेगी, रॉयल्टी आने लगेगी। देवताओं के चेहरों पर जो तेज है, दिव्यता है, वो आने लगेगा। देवता खुश रहते हैं या थोड़ा घबराए हुए? बहुत खुश रहते हैं, वो आ जाएगा। हम ये थे पहली सुंदर स्मृति। रोज मुरली इसी पर चलती है, रोज मुरली पे ध्यान दो। बाबा याद दिलाता है, मैंने तुम्हें क्या बनाया था, कितना धन माल दिया था, कहाँ कर दिया तुमने सब, ये किया था वो किया था, रोज याद दिलाता है। तुम देवी देवता थे, श्री लक्ष्मी नारायण का राज था, तुम ऐसे थे, निरोग थे, तन मन धन का सुख था, था धन संपदा थी। एक मुरली आप सुनेंगे अभी, जैसे यहाँ पत्थर हैं, वहां सोना होगा, रेत में भी सोने के कण मिक्स होंगे। यहाँ के फूलों में तो सुगंध ही नहीं है, वहां के फूल तो बहुत सुगंधित होंगे। तो जब बहुत सुगंधित होंगे फूल, तो क्या होगा राजीव? बोलो, सेंटी सेंट, सेंट भी बन गए यहाँ, और सेंट छिड़क दिया गया है, जैसे हवा चलेगी खुशबू फैल जाएगी पूरे नगर में। तो बाबा रोज यही तो याद दिलाते हैं, तुम क्या थे। उससे पहले का क्या याद दिलाया? निराकार, और कहाँ थे तुम्हारी वहां क्या स्थिति थी। देखो मुक्ति की दुनिया में कितनी चर्चाएं हैं, हर धर्म का अंतिम लक्ष्य मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण ये मान लिया गया है, पर उसकी स्पष्ट व्याख्या किसी के पास भी नहीं। बाबा ने चार लाइनों में सारा ज्ञान दे दिया मुक्ति का, लंबी चौड़ी फिलोसोफी नहीं, तर्क वितर्क नहीं। तुम परम धाम के वासी हो, जब तुम वहां थे तो मुक्त थे, संपूर्ण निर्विकारी, पाप के खाते यहीं समाप्त करके वहां पहुंचे थे, हो गया बस। तो वो स्थिति की याद आते ही क्या हो जाएगा यहाँ की स्थिति में? शांत स्थिति, स्वीट साइलेंस होगी जीवन में, मुक्त अवस्था हम बना सकेंगे। अब आगे चलें। बाबा ने वर्तमान की, संगम युग की बहुत सुंदर सुंदर चीजें हमें याद दिलाई हैं, जिनको स्मृति में रखना श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए आवश्यक है। बोलो, वर्तमान की, ब्राह्मणों की। तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। आई याद सभी को या नहीं? नहीं आई, हाथ उठाओ जिन जिन को आई। नहीं आई, देखो 5-10 को आई, भाइयों में तो किसी को नहीं आई। धीरे धीरे उठा रहे कि कुछ कहा तो है, क्योंकि मेरी बात सुनी नहीं ध्यान से, मैं देख रहा था। क्या याद दिलाया बाबा ने? तुम, अर्थात तुमने हर कल्प में माया को जीता था, अब फिर से जीतेंगे ना पक्का? यह माया तो बहुत पावरफुल है, पता नहीं जीत पाएंगे या नहीं। आज बाबा मुरली में एक बात कह रहे थे, कहीं सोचते हैं कल पहले भी फेल हुए थे तो अब भी हो जाएंगे, उल्टा सोचने की आदत। कल पहले माया को जीता होगा तो अब भी जीत लेंगे, उल्टा सोचने की आदत। क्यों नहीं ये सोचा जाए, हमने कल्प कल्प माया को जीता है, अब हमारी जीत निश्चित है, हम माया से अधिक पावरफुल हैं। भाग्य की याद दिलाई बाबा ने हमें, करो याद। श्रेष्ठ भाग्य की याद दिलाई। सबसे बड़ा भाग्य क्या हो गया हमारा? भगवान सामने, गीत में भी था ना, उसको मिलने के लिए न जाने क्या क्या किया था, अब घर मिलने आ गया वो हमसे, हमें नहीं जाना पड़ा, कहें वही आ गया हमारे घर, संदेश भी भेज दिया, आ जाओ मैं इधर आया हूँ। कईयों ने फेंक दिया फाड़ के, कहाँ से आया, आया ही नहीं होगा, देखो भाग्य देखो है। भगवान जिसको बुलाते थे जब उसने संदेश भेजा, अपने संदेश वाहक भेजे कि मैं आ गया हूँ आ जाओ तुम भी, तो कईयों ने रिजेक्ट कर दिया। ये भाग्य दुर्भाग्य है। हमारा भाग्य डायरेक्ट भगवान से मिलन, भाग्य विधाता से मिलन, वो हमारा हो गया। कितना भाग्य के द्वार ही खुल गए। इससे भी अच्छी बात बाबा क्या कहते, क्या दे दिया बाबा ने, भाग्य की लाइने खींचने की कलम, जो चाहे लिख दो। मैं माताओं से एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको ब्रह्मा जी कलम दे दें, ये कलम पेन वाली और एक अच्छा सा पेपर, कि तुम्हारे चार बच्चे हैं ना इनका भाग्य लिख दो, इसमें जो लिख दोगे वो ही तथास्तु। क्या लिखेंगी माताएं, बोलो बोलो। भाइयों को दे दें, क्या लिखेंगे माताएं बहने कन्याएं, सबसे पूछ रहे हैं। आपको पेन दे दिया जाए कि आपके चार भाई बहने और हैं उनका भाग्य लिख दो। सोच लेना, श्रेष्ठ भाग्य किसे कहा जाता है। कुल अच्छा हो, तन अच्छा, मन अच्छा, धन संपदा अच्छा, संबंध अच्छे, सब प्राप्तियां बहुत श्रेष्ठ, एजुकेशन अच्छी, पद पोजीशन बहुत अच्छी, हर कदम पर सफलता, निर्विघ्न जीवन, निरोग जीवन, यही होता है ना श्रेष्ठ भाग्य। लिख देंगे हमारी माँ कौन है, स्वयं भाग्य विधाता। तो हमारा भाग्य कैसा लिखा होगा, या पता ही नहीं क्या लिख दिया, पता है या नहीं, बोलो कुमार बोलो, पता होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ भाग्य लिखा माँ बाप दोनों ने, अपने बच्चों का पहले सर्वश्रेष्ठ भाग्य लिखेंगे ना, तो भाग्य की स्मृति दिलाई, तुम जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तो ये स्मृति आने से क्या हो जाएगा, हम बहुत खुश रहेंगे और ये खुशी हमारे भाग्य के सितारे को चमकाती ही रहेगी। खुशी बहुत बड़ी चीज है, वो भी बहुत भाग्यवान है जो बहुत खुश रहते हैं, और जो अपनी खुशी को बेच डालते हैं दो दो पैसे के भाव सस्ते में बेच देते हैं वो भाग्यवान है। खुशी की कीमत बहुत ज्यादा और बेच देते हैं बहुत सस्ते में, नहीं बेचनी है, कोई ज्यादा दाम देता हो तो ले जाओ। 1 करोड़ रुपए दे रहा हो आपको कि खुशी अपनी दे दो तो दे देना, लेकिन 10 रुपए में तो नहीं देनी है ना, 5 रुपए में तो खुशी नहीं देनी है, समझ गए ना इसका मीनिंग। कई लोग छोटी बातों में अपनी खुशी को नष्ट कर लेते हैं, ये विवेकशीलता नहीं है। हमें बहुत बुद्धिमान बनना है, खुशी बहुत बड़ा खजाना है, जो बहुत खुशनुमा है उनकी स्थिति श्रेष्ठ मानी जाएगी। जो बहुत संतुष्ट हैं, गुणों पे ध्यान दें, जो बहुत संतुष्ट हैं उनकी स्थिति श्रेष्ठ मानी जाएगी, जो सरल चित्त हैं, निरंकारी हैं, क्रोध मुक्त हैं उनकी स्थिति श्रेष्ठ मानी जाएगी, जो बाबा के यज्ञ के लिए क्या हैं, पूर्ण समर्पित। समर्पित कहते हैं नहीं यहाँ के रह गए, डेडिकेशन इंग्लिश में कहते हैं, डेडिकेशन, बाबा के कार्य को पूर्ण जिम्मेदारी पूर्वक संपन्न करना, ऐसी लगन, क्योंकि ये कार्य किसी और का नहीं, किसका है, हमारा है। अपने कार्य के प्रति मनुष्य कौल बेला नहीं होना चाहिए। आजकल कुछ लोग हो जाते हैं, उसको अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो बाबा के कार्यों के प्रति संपूर्ण समर्पण था। यज्ञ को हमें फलीभूत सफल निर्विघ्न बनाना ही है, ये श्रेष्ठ चिंतन श्रेष्ठ स्थिति है। तो हमें स्मरती रहे, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। और आगे बोलो, पीछे वाले भाई बोलेंगे, ठहरो पीछे वाले भाई, श्रोतागण सभी केवल सुनने के लिए बैठते हैं। बोलो, क्या याद दिलाया बाबा ने? अरे और आगे चलो, नहीं बोलते भाई, पीछे की बहनें खड़े होके बोलेंगी, कन्याएं बहुत आई हैं आज, नीचे से आ गई क्या? खड़े हो जाओ और बोलो पीछे वाले, हो गया, आगे आगे चलो। क्या याद दिलाया? नहीं, याद ही नहीं आ रहा आपको, इसलिए कल से मुरली इस ढंग से सुनना कि बाबा रोज हमें क्या याद दिलाते हैं। रस आ जाएगा आपको मुरली में, नहीं तो लगेगा वही वही है, वही वही नहीं है, रोज गुह्यता है, बहुत गुह्यता है। इसलिए कल से ध्यान देना बाबा क्या याद दिला रहे हैं। उसने याद दिलाया है, तुम इस सृष्टि के आधार मूर्त हो, तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो, तुम बहुत जिम्मेदार हो। नजदीक में कितनी बार याद दिलाया अव्यक्त बाबा ने भी, जो मुरलियां चली उसमें भी आ गया, तुम आधार हो, जिम्मेदार हो। ये याद आने से क्या हो जाएगा? सोचो गहराई से, चिंतन जरूरी है। जब ऑर्डली स्टूडेंट चिंतन नहीं करते, वो ढीले रह जाते हैं, उन्हें लगता है वही वही बात सुनाई जा रही है। क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी? विश्व कल्याण की, और ऐसी जिम्मेदारी है जिसको बाबा ने कहा, जो तुम्हारी स्थिति होगी वही विश्व की स्थिति बन जाएगी। तुम पूर्वज हो, तुम्हारी स्थिति का असर सभी धर्मों की आत्माओं तक जाएगा। ये याद दिलाया, जिनको ये याद रहेगा वो सवेरे सोएंगे। बोलो, जो कहते हैं सोना ही चाहिए, गहरी नींद आती है, हाथ उठाओ। हाँ, नहीं उठा रहे कोई भी, तो सवेरे उठ के क्या करना चाहिए? आप ही कल ये याद रखना, हम आधार मूर्त हैं, हमारी स्थिति के वाइब्रेशंस सारे संसार को जाते हैं। हम भेजे या ना भेजे हो तो जाते ही हैं। जड़ों में पानी डाल दिया, उसका असर पूरे पौधे पर पेड़ पर होगा ही। तो हम आधार हैं, ये बात हमें चुस्त कर देगी, अलबेलेपन को समाप्त कर देगी, केयरलेसनेस खत्म हो जाएगी, हम कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम यदि निगेटिव होंगे तो क्या जाएगा सारी दुनिया को? कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत निगेटिविटी बढ़ रही है। हम यदि परचिंतन में होंगे, हम यदि व्यर्थ चिंतन में रहते होंगे, तो कितनी कमजोर एनर्जी सारे कल्प वृक्ष में फैलेगी, सूख जाएगा कल्प वृक्ष। सूख गया है ना, अभी सूख गया है। हम बहुत खुश होंगे, हम बहुत पवित्र होंगे, हम बहुत योगयुक्त होंगे, शक्तिशाली स्थिति में होंगे, कल्प वृक्ष को जल खाद सब मिलता रहेगा, हरा भरा रहेगा, सभी धर्मों की आत्माएं सुखी हो जाएंगी। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये याद दिलाकर बाबा ने हमें जगा दिया। हम तो क्या सोच रहे थे, आप में से जो सोचता हो अपने सोच को जरा महान बनाओ, मेरे बच्चे इनकी पालना करनी है, पढ़ाना है, शादियां करनी है, इनको सेट कर देना अच्छी तरह, इनके लिए मकान बना लेना है, ये तो सब सोच रहे हैं। लेकिन महान आत्माओं को क्या सोचना है? सोच लो, बताओ नहीं, सोच लो। ये तो सारा संसार सोच रहा है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा करना। लेकिन जो अपने को पूर्वज मानेंगे, उनके लिए सारा संसार ही उनकी रचना है, वंशावली है, उन्हें उनको भी अच्छे वाइब्रेशंस देने होंगे। हम उनके लिए कपड़े तो नहीं बनवाएंगे, हम उनके लिए मकान भी नहीं बनवाएंगे, वो काम उनका अपना है या सरकारों का है। हमारा काम है अच्छे वाइब्रेशंस देना। देखो आप हॉस्पिटल में जाओ, आपके पास पैसा है, डॉक्टर आपका इलाज करके अच्छे इंजेक्शन लगा के आपकी जो पीड़ा है, जो दर्द हो रहा है उसको ठीक कर देंगे। लेकिन जो मन की पीड़ा है वो, जो मन में कोई टेंशन हो वो, अभी हो तो आप हॉस्पिटल में, आपका रोग तो ठीक हो गया लेकिन आपको टेंशन लगी हुई है किसी बच्चे की, उसने बुरा व्यवहार कर दिया, आपको चिंता लगी हुई है किसी और बात की, तो हॉस्पिटल में इंजेक्शन से वो तो नहीं दूर होगी, वो दूर होगी हमारे वाइब्रेशन से। इसलिए अपने को जिम्मेदार आत्मा समझना है। कौन कौन समझते हैं, समझेंगे आज से? ठीक है, 10 ही बहुत है बस, तो 50 ने हाथ उठा दिया। कई माताएं तो सोच ही रही थी उठाए ना उठाए, हमारे बच्चे भी तो हैं, उनका क्या होगा फिर? आपके बच्चों का अच्छा होगा, जब आप विश्व को वाइब्रेशंस देने लगेंगे तो बच्चों को उनको मिलने लगेगा ना। ये बात सभी को बहुत ध्यान में रखनी है। अगर हम संसार को 15 मिनट रोज वाइब्रेशंस देने लगें, अपने योग को ऐसा कर दें कि संसार को वाइब्रेशंस पहुंचे 15 मिनट केवल, तो उससे जो पुण्य जमा होंगे उस पुण्य के बल से जीवन के अनेक विघ्न नष्ट हो जाएंगे। सुना सभी भाई बहनों ने? सुना? जिनके जीवन में बहुत विघ्न आते हों, विघ्नों का जिम्मेदार कोई बाबा नहीं है कि बाबा परीक्षा क्यों ले रहा हमारी, विघ्नों के जिम्मेदार हैं हमारे अपने कर्म, हमारे अपने संस्कार स्वभाव, हमारा अपना सोचने का तरीका। अगर हम ऐसा पुण्य करने लगे तो इस पुण्य की शक्ति से विघ्नों का बोझ हल्का होने लगेगा। सभी कर लिया करें 15 मिनट का योग, कोई भी टाइम, सवेरे 6 बजे बाबा के रूम में जाकर जैसी जैसी आपकी सेवाएं हैं, शाम को कोई भी टाइम, एक 15 मिनट बिल्कुल विश्व को सकास देनी है। अपने को स्थित करे, मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, सृष्टि का आधार मूर्त हूँ, बस योग लगाएंगे, बाबा से शक्तियां लेंगे, आप ही वो सारे संसार में पहुंचने लगेगी। तो ये बहुत सुंदर काम सबको करना। और क्या याद दिलाया बाबा ने? एक सुंदर बात जिसके लिए बाबा आए, वो भी मुरलियों में बहुत याद दिलाते हैं हमें। बोलो किसको याद आएगी? ये भाइयों का काम है। ठीक बोल रहे, बोलो। बाबा आए हैं हमें पावन बनाकर वापिस ले जाने, बिना पावन बने नहीं, बिना विकर्मों को नष्ट किए नहीं ऊपर जाएंगे। कई लोग ये भी सोचते हैं कि पाप कर्म जो हमने किए वो समा जाएंगे आत्मा में, उसको लेकर कोई परम धाम नहीं जा सकता। कई लोगों के पास ज्ञान स्पष्ट नहीं है तो सोचते हैं द्वापुर में फिर पाप कहाँ से शुरू हुए, उसकी एक गति है अपनी। द्वापुर हमारा कोई दुखों में थोड़ा ही बीता है। कई लोग इतिहास छोटा मोटा झूठा सच्चा पढ़ के सोचते हैं द्वापुर में बड़ा दुख था, द्वापुर में दुख नहीं था। क्या कहते हैं बाबा? अगर आधा आधा हो सुख और दुख, फायदा क्या हुआ भगवान के आने का, हमारा ये सब करने का फायदा? तीनों युग बहुत सुंदर, द्वापुर के शुरू में अंत तक भी बहुत पाप नहीं होते, थोड़ा थोड़ा होता है, दुख भी बहुत कम, रोग तो जीवन में एक बार होगा, कभी बुखार उखार होता ही नहीं। इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पाप मर्ज हो जाएंगे यहाँ और हम परम धाम चले जाएंगे, उन लोग वो गलत सोचते हैं। ये सोचना गलत है, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा। आत्मा को पूरा पावन बनाकर बाबा घर ले जाएगा, पावन निर्विकारी, अर्थात सभी पापों से भी मुक्त, सभी विकारों से भी मुक्त। ठीक बात है या नहीं? इसमें किसी को कुछ कहना तो नहीं? बिल्कुल स्वच्छ बनाकर। आत्मा पर अगर पाप रह गए, चाहे वो मर्ज हो, वो भारी होगी, वो उड़ नहीं सकेगी परम धाम के लिए, उड़ेगी नहीं। उड़ना है तो बिल्कुल पवित्र और पापों के बोझ से मुक्त होनी चाहिए, इसलिए बाबा ने योग सिखाया। तो अगर हमें ये याद रहने लगे कि घर जाने का समय आ गया, तो क्या होगा स्थिति में? क्या हो जाएगा? खुशी हो जाएगी। बताओ क्या हो जाएगा? माताएं जब सेवा में आती हैं और उनको पता है कल की टिकट है, कल जाना है, क्या क्या होता है बताओ? बहुत प्रैक्टिकल, कहीं भी जाना है, आपको घर से यहाँ आना था, आपकी कल की टिकट थी, क्या हुआ था मन में? मधुवन छा गया था ना, अब वहाँ जाएंगे, बैग बैगेज रेडी। अब जब यहाँ से जाना है तो एक दिन पहले से घर आंखों में घूमने लगता है, घूमता है। ये नेचुरल चीज है, इसमें आपका दोष नहीं है। आप ये ना सोचना ये हमें कोई गलत बात कही जा रही है, ये नेचुरल है। हमें भी घर जाना है तो यहाँ का सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है या लेके जाना है? लेके जाएंगे अलौकिक खजाने, स्थूल चीजें कुछ नहीं जाएगी, न मेरे जाएंगे न मेरा जाएगा, सब यहीं छूटेगा, आत्मा बनकर सब चलेंगे। तो वैराग्य हो जाएगा, देखो कितनी बड़ी बड़ी धारणाएं हो जाएंगी, स्थिति डिटैच हो जाएगी, अनासक्त, यहां से उठ जाएगा मन बुद्धि ऊपर, घर चलना है। तो ये हमें स्मृति आ जाए, कल कल हमने ये 5000 वर्ष का खेल कैसे पूरा किया है, कैसे भगवान आए हम सबकी पालना की, कितने हम और वो समीप हुए, अब वापिस चलना है, फिर हम देवलोक में आ जाएंगे। ये बिल्कुल स्मृतियां क्लियर होती चले हमारी बुद्धि में, इससे स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएगी। तो हम सभी अपने अपने लिए कम से कम 5 श्रेष्ठ स्मृतियां चुन के रखा करें, जैसे मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, सभी बहने माताएं कन्याएं भी ये संकल्प ले लें, इसको स्मृति में रखा करें, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। आप सेंटर में हैं तो मैं इस स्थान की इष्ट देवी हूं, मेरे कारण ये स्थान तीर्थ है, तीर्थ में देवी होगी ना, इष्ट देवी होगी। भाई लोग भी, मैं एक मान आत्मा हूं इस घर में, ये स्मृति स्थिति को श्रेष्ठ रखेगी। महान आत्मा का अगर खान पान में आसक्ति चली गई तो अपने को ख्याल आएगा कि नहीं ये तो गलती हो गई, हम महान हैं, खाने पीने के पीछे हम नहीं भाग सकते, स्वाद के पीछे हम नहीं भाग सकते, हम महान हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति, इस देव देवी की स्मृति, मैं एक महान आत्मा हूँ ये स्मृति हम सभी लिस्ट बनाए। देव कुल की महान आत्माएं हैं, घर वापिस जाना है, सर्वश्रेष्ठ भाग्य के धनी हैं हम सब, हम जैसा भाग्य और किसी का होता ही नहीं। वो दिन जल्दी नजदीक आ रहा है जब संसार हमारे भाग्य के गुणगान करेगा और हमारे भाग्य के गुणगान करके खुद भी भाग्यवान बन जाएंगे। तब हमें पता चलेगा बाबा ये बात कहा करते थे, तुम्हें अभी अपने भाग्य का पता नहीं चलता, तुम्हें अपने स्वमान का नशा अभी नहीं चढ़ता। वो दिन आएगा जब तुम्हें बहुत नशा चढ़ जाएगा तुम अपने भाग्य को देखकर बहुत आनंदित रहेंगे। तो सभी स्मृतियों के द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने पे चिंतन करना। हमारे चिम्मन भाई आ जाओ, चिम्मन भाई देखो ये अमेरिका जा रहे हैं। चिम्मन भाई बहुत साल से यहाँ रहते हैं, 40 साल से ज्यादा। माइक दे दो भाई। इनके लौकिक परिवार अमेरिका में हैं। चिम्मन भाई बहुत भोले भाले हैं। इनके बड़े भाई मंत्री भी रहे पिछली सरकार में, अभी भी एमएलए हैं, कई बार एमएलए रह चुके हैं। लेकिन ये पक्के सेवाधारी हैं, पक्के, किसी को ना नहीं करते। मरीजों की सेवा यही करते हैं, कईयों को तो परमधाम तक भी भेजते हैं। चिम्मन ये तुम्हारी वो नहीं, कमी नहीं, बहुत सेवा करते हैं भाई। शुरू से कम 30 साल से दादी ने इनको ड्यूटी दी होगी और ये सच्ची लगन से, चाहे पैदल हॉस्पिटल जाना पड़ता था, अब तो थोड़े हैं बाइक वाइक, कुछ नहीं होता था, पैदल ही जाते थे। सच्चे मन से इन्होंने सेवा की है। चलो सुनाओ चिम्मन भाई।
ओम शांति। बाबा के घर कितना आनंद है, और जो आनंद बाबा देते हैं वो हमारे जो परिवार है, बाबा के बच्चे, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। तो जो आनंद बाबा हमें दिया है उस आनंद का दूसरों को भी अनुभव कैसे हो, वो बाबा ने चांस दिया है सेवा का। ऐसे तो 5-6 साल पहले वीजा मिला था, लेकिन जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हम चलो अभी एक बार चक्कर लगा के देखते हैं।
तो कितना समय जाएंगे?
2 महीना।
2 महीना जाते
अमेरिका और कनाडा।
नहीं तो कई लोग तो 6-6 माह जाते हैं। चिम्मन भाई की सेवा इतनी है कि सेवा इन्हें खींचने लगेगी फिर। नहीं ये सच्ची बात है, मैं तो हंसी में कहा, पर ये सचमुच सच्चे सेवा, निष्काम सेवाधारी, निष्काम, जिसकी बड़ी महिमा है इस शब्द की। चिम्मन भाई ऐसी सेवा करते हैं, जीवन में कभी किसी को ना नहीं किया इन्होंने सेवा के लिए। बूढ़ों की कई तरह की सेवा होती है आप जानते हैं, सब करते हैं ये
सेवा। करते हैं ऐसा लगता है बाबा का परिवार है ये। बाबा ने जो हमें इतना ऊंचा परिवार दिया है, तो ये परिवार सारे कल्प में कहीं नहीं मिलेगा। इस परिवार में हमें अपना भाग्य बनाते हैं, तो वो भाग्य हमारा कितने जन्म चलेगा? पूरा 84 जन्म। तो ये भाग्य बनाने का जो बाबा ने चांस दिया है, तो बहुत ही लकी समझते हैं। ओम शांति।
आओ देव भाई, देव भाई स्वागत करें। हाँ अरे दीदी भी आई है, लाओ भाई लाओ, इधर तो देखा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, दो भाई।
ओम शांति। चिमन भाई तो यहाँ सेवा करते हुए अपना भाग्य बहुत बनाते ही रहते हैं, और अभी इनको विशेष सेवा का चांस मिला है। विदेश की बहनें हो या विदेश के भाई हो, उनकी भी बहुत सेवा करते हैं। जब वो यहाँ आते हैं ना, किसको सेवा करना है, किसको चाय देना है, किसको खाना देना है, अथक होकर के सेवा करते रहते हैं। तो इनके लौकिक रिश्तेदार काफी समय से इनको बुला रहे थे। कुछ साल पहले भी इनका प्रोग्राम बना था, लेकिन ड्रामा अनुसार वो प्रोग्राम नहीं बन पाया। तो अभी बनाया, तो हम इसको बहुत बहुत बधाई देते हैं, सब ताली बजा करके। अच्छा चिमन भाई, आप मधुबन को मिस करोगे या मधुबन वाले आपको मिस करेंगे, बताओ?
क्योंकि यहाँ
हाँ मधुबन वाले मिस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई काम होता है चिमन भाई कर देगा, और क्या रात हो दिन हो अथक होकर के बहुत प्यार से सेवा करता है, और कल भी सुबह सेवा करते हुए जाने वाला है। वैसे तो क्लास में इसको छुट्टी देनी थी, लेकिन बोला कि कल सुबह 5 बजे जाना है, तो इसलिए हमने कहा कि अभी इनको छुट्टी देते हैं, तो अभी इसको हम सब बहुत बहुत इस विदेश सेवा के लिए बहुत बहुत मुबारक देते हैं। और चिमन भाई बहुत प्यार से सेवा करना, मधुबन वाले सब आपके साथ हैं, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा पहले इनको
लाओ भाई, ये ले आओ।
शांति से